स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी हैं, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जोड़ा है तुझसे प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं फिर से आप सबों को बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से जकरिया नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों तक अपने वचन को पहुंचाता है। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, हमारी प्रार्थना है पिताजी कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो अलग अलग स्थानों पर बैठकर इस समय आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जब आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनता है तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के हृदय में कार्य करने पाए, उनके जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए ताकि वे आपसे और अधिक प्यार कर सकें, आपके वचन को गहराई से समझ सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने वाले बन सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस घड़ी बीमार हैं, निराश हैं, चिंता और परेशान हैं और आपके वचन को सुन रहे हैं। प्रभु जी, आप उन पर दया दृष्टि करें, उन्हें स्पर्श करें, उनकी बीमारियों से आप उन्हें छुटकारा दें, उनके जीवन में अपनी शांति और आनंद प्रदान करें, उनके हर एक के पापों को आप ही क्षमा करें। धन्यवाद प्रभु हम सबकी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब जकरिया नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। जकरिया द्वारा देखे गए परमेश्वर के 10 दर्शनों के अध्ययन में हमें एक बात ध्यान में रखना है कि यह बाइबल अंश धर्मशास्त्र का एक सर्वाधिक अलंकारिक भाग है। जी हाँ, इन 10 दर्शनों को एक साथ रखकर एक ही संदेश पर केंद्रित करके देखना हमारे लिए आवश्यक है। इनका सार्विक दृष्टिकोण हमें समझने में सहायता करेगा कि प्रत्येक दर्शन हमसे क्या कहना चाहता है। हमें इनको अन्य भविष्यवाणियों के संदर्भ में भी देखना होगा क्योंकि प्रेरित पत्रस कहता है, दूसरा पत्रस की पत्री 1:20 में, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। मेरे मित्रों, इसका अर्थ है कि हम हर एक भविष्यवाणी को भविष्यवाणी की संपूर्ण परियोजना में समझने का प्रयास करें कि हमें आदि काल से अनंत काल तक का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त हो। तो आइए आगे बढ़ते हुए आज हम अपने अध्ययन में देखेंगे जकरिया की पुस्तक उसके 3 अध्याय। यहां पर हम देखते हैं यहोशु और शैतान का दर्शन। जकरिया 3:1 में लिखा है, फिर उसने यहोशु महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। लिखा है, फिर उसने यहोशु महायाजक को मुझे दिखाया। यह यहोशु वह नहीं है जो इसराइल को लेकर प्रतिज्ञा के देश में आया था। यह यहोशु स्वदेश लौटे इसराइलियों का महायाजक था। यहोशु का अर्थ है यहोवा उद्धार करता है, परंतु यूनानी भाषा में यहोशु को यीशु कहते थे। आपको स्मरण होगा कि मत्तयि सुसमाचार उसके अध्याय 1 पद 21 में स्वर्गदूत ने कहा था, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अतः इस महायाजक के लिए यह नाम यहोशु उचित ही था और इसराइल के लिए एक पवित्र महायाजकीय राष्ट्र होने का चित्रण है। कहता है, यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। यह स्वर्गदूत देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु है, जैसा हम पहले भी अध्ययन में देख चुके हैं। लिखा है, और ये शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। मेरे प्रियो, यहोशु को देखने और शैतान को देखने का अर्थ है कि शैतान भी वास्तव में है और वह भी एक व्यक्ति है। आज हम शैतान में रुचि का पुनः जागृत होना देखते हैं। पिछले 50 वर्षों में तो शैतान का नाम मसीही जगत से भुलाया जा चुका था, संभवतः यह सोचकर कि नाम ना लेने से वह उपस्थित नहीं रहेगा, परंतु वह उपस्थित रहा है। वह एक जीवित वास्तविकता है। आज की रुचि प्रभु यीशु और परमेश्वर की अपेक्षा शैतान में अधिक है, जिसे आप प्रतिदिन देखते हैं। बाइबल कहती है और आधुनिक विचार भी यही कहते हैं कि वह एक वास्तविकता है। अतः वे आत्माओं के संसार में प्रवेश कर चुके हैं। यदि बुराई का देह धारण है तो अच्छाई का भी देह धारण होना चाहिए। अच्छाई परमेश्वर से है और परमेश्वर अच्छा है, वह भला है। प्रभु यीशु में विद्यमान परमेश्वर उन लोगों के लिए समाधान है जो अपनी समस्याओं और संसार की बुराइयों का समाधान खोजते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसका विरोध करने को खड़ा था, वह उसके पक्ष में नहीं परंतु विपक्ष में खड़ा था, उस पर दोष लगाने के लिए खड़ा था। यह शैतान की विशेषता है। धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर के पास हमारा एक सहायक उपस्थित है। हमें परमेश्वर के पास एक सहायक की आवश्यकता क्यों है? हम पर दोष लगाने वाले को उत्तर देने के लिए। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता था, गिरा दिया गया है। मेरे विचार में वह आज भी हम पर दोष लगाता है। मेरी युवावस्था में कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि मैं परमेश्वर की सेवा में धर्मशास्त्र की शिक्षा दूंगा। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया और मैंने सेवकाई में जाने के लिए अपने आप को समर्पित किया, तब मेरे घर के अपने लोग मुझसे नाराज थे, वे खुश नहीं थे। मेरे मित्रों, यहाँ पर लिखा है कि आप के विरोध में एक व्यक्ति हमेशा खड़ा है जो आपके ऊपर दोष लगाता है। आप यह सोचिए कि जब आपके घर के लोग, अपने लोग आपके विरोध में हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह सेवा शैतान के पास भी है विरोध करने के लिए। और उस पूरे दिन में शैतान परमेश्वर के समक्ष मुझ पर भी दोष लगाने के लिए व्यस्त रहा होगा। लिखा है, तू उसे सेवा में बुलाने की मूर्खता कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सेवकाई में आए, उसके लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, परंतु विरोध में शैतान खड़ा होता है। वह तो सेवा के योग्य है ही नहीं, यह कह करके आपको निराश करता है। शैतान वहां भी दाहिनी ओर खड़ा होकर यहोशू पर दोष लगा रहा था। वह शायद कह रहा था, तो इस अशुद्ध मनुष्य के साथ कैसे निर्वाह कर सकता है? शैतान इसराइल का भी विरोध कर रहा था। यदि आप जानना चाहते हैं कि यहूदी विरोध का नेता कौन है, तो वह शैतान है। परंतु परमेश्वर की संतान के पास एक सहायक है जो परमेश्वर के पास उपस्थित है। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय के 1 पद में प्रेरित विश्वासियों से कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह है। प्रभु यीशु यहोवा का दूत है जिसके सामने महायाजक यहोशू जकरिया के इस दर्शन में खड़ा है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। जकरिया 3:2 में लिखा है, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के, क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? यहां पर हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे शैतान, यहोवा तुझे घुड़के। मेरे विचार में तो यह फटकार कठोर नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसका मान रखा क्योंकि वह परमेश्वर द्वारा सृजा गया था। यशायाह नबी की पुस्तक 14:12 में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे। वह संभवतः परमेश्वर द्वारा सृजित सर्वोत्तम प्राणी था, परंतु उसमें पाप समा गया। कैसा पाप? लालसा का या चोरी करने का? जी नहीं, घमंड करने का। उसे स्वतंत्र इच्छा दी गई थी जिसे उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध रखा। मेरे मित्रों, यह पाप है। यशाया की पुस्तक 53:6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, हत्या, चोरी, झूठ, व्यभिचार आदि सब अपना अपना मार्ग हमने ले लिया। ये सब कुछ उसी में आते हैं। मनुष्य की समस्या यही है। वह कहता है, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर शैतान को यहोशु के नहीं इसराइल जिसकी राजधानी यरूशलेम है उसके पक्ष में घुड़कता है। लिखा है, क्या यह आग में से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? ऐसा दिखाई देता था कि बेबीलोन द्वारा नष्ट किए जाने के बाद यरूशलेम का पुनः निर्माण कभी नहीं होगा। 70 वर्ष तक वह नगर खंडहर के रूप में पड़ा था और राख का ढेर वहां पर था, परंतु 70 वर्ष के बाद उसका पुनः निर्माण हुआ, अतः वह नगर आग में से निकली हुई लुकटी था। जॉन वेस्ली अपने आप को आग से निकली लुकटी कहता था। मेरे विचार में हम में से अनेक आज अपने आप को ऐसा ही देखते हैं। मुझे भी अपना अतीत देखकर ऐसा ही लगता है कि मेरा उद्धार एक दुर्घटना थी, परंतु ऐसा होना ही था। अतः मेरा उद्धार एक दुर्घटना नहीं है। प्रत्येक पापी जो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है उसे आग से निकली लुकटी आप कह सकते हैं। मैं भी उसी में से एक हूं। जकरिया 3:3 में आगे लिखा है, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि यहोशू मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। दर्शन में यहोशू को देखना वास्तव में यहोशू से पूर्व अवस्था को दर्शाता है। हम देखेंगे कि यह दर्शन एक अत्यधिक कठिन प्रश्न का उत्तर देता है। समस्या तो यही है, अब तक हमने यह देखा है कि परमेश्वर इसराइल राष्ट्र को स्वदेश लौटाएगा और उनके मध्य वह वास करेगा। वे उसकी प्रजा रूप में पूर्ण रूप से पुनर्वास करेंगे। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, परंतु यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। वह उन्हें उस देश में आशीषित करेगा। अब वे यदि परमेश्वर से दूर हों तो वह यह सब कैसे कर पाएगा? जकरिया के युग में वे परमेश्वर से बहुत दूर थे और पाप में जीवन जी रहे थे। आज की दशा भी ऐसी ही है। वहां पापियों का वास तो है ही, देश पवित्र कैसे होगा? वहां के लोग पवित्र जीवन कैसे जिएंगे? अगर इस समस्या को इस प्रकार देखा है या आपको देखना है तो आप उसके पिछले परिदृश्यों को देखें। पिछले परिदृश्यों में इसराइल के लिए परमेश्वर के महान अनुग्रह का उद्देश्य इसराइल के बैरियों के दंड से प्रकट होता है और उस देश तथा देशवासियों के लिए पुनर्स्थापन से विदित होता है। परंतु एक गंभीर प्रश्न यह है, एक अनंत पवित्र परमेश्वर पापी और कलंकित मनुष्यों में अपनी ऐसी योजना की पूर्ति कैसे कर सकता है? उनके साथ परमेश्वर की अलौकिक दया परमेश्वर की धार्मिकता के साथ कैसे मेल खाएगी? मेरे विचार में हम दर्शनों में ही इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। यहोशु उस राष्ट्र का प्रतिनिधि था। आगे पढ़ने पर हमें पता चलेगा कि यहोशु के वस्त्र मैले हैं। महायाजक के लिए अनिवार्य था कि वह स्वच्छ दाग रहित वस्त्र पहने, अन्यथा वह परमेश्वर की सेवा के योग्य नहीं ठहर सकता। यहोशु महायाजक तो था, परंतु इस दर्शन में वह इसराइल का प्रतिनिधि है। यद्यपि वह परमेश्वर का महायाजक था, वह यहां अशुद्ध रूप में दर्शाया गया है। हो सकता है कि वह ऐसा ही था, परंतु मैं उसके बारे में नहीं जानता। जी हां, यह अवश्य जानता हूं कि महायाजक इसराइल का प्रतिनिधि रहा है। प्रायश्चित के दिन महायाजक महापवित्र स्थान में परमेश्वर के समक्ष इसराइल का प्रतिनिधित्व करता था। इसी प्रकार प्रभु यीशु हमारा महायाजक है, वह विश्वासियों के समूह का प्रतिनिधि है, अर्थात कलीसिया का प्रतिनिधि है। वह हमारे लिए परमेश्वर के समक्ष उपस्थित है। यहोशु को दसों दर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखना और इसराइल राष्ट्र के भविष्यवाणी संबंधित परिदृश्य में समझना हमें सीमित व्याख्या से मुक्ति दिलाएगा। मेरे प्रियो, लियोपोल्ड इसराइल के महायाजक के बारे में लिखता है, कहता है वह अपने पवित्र पद के आधार पर इसराइल का प्रतिनिधि वरन स्वयं इसराइल का है, या यूं कहें कि वह इसराइल है। वह उस राष्ट्र के लिए प्रार्थना करता है, उसके लिए वह महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है, वह राष्ट्र का पाप उठाता है। अतः हम इस अध्ययन के द्वारा से या इस अध्याय के अभिप्राय को केवल यहोशु एक मनुष्य तक ही सीमित न रखें। हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि उसकी दशा वास्तव में इसराइल की दशा है। उसका दोष मुक्त होना इसराइल के लिए एक विशेष रूपक है। उसे दिए गए आश्वासन और शांति के वचन इसराइल के लिए भी उतनी ही वैधता के साथ प्रासंगिक होते हैं। यह एक अति उत्तम अभिवादन है, या यूं कहें कि एक कथन है। यद्यपि लियोपोल की हर एक व्याख्या स्वीकार योग्य नहीं है, यह बात महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, यहोशु एक प्रतीक था, एक प्रतिनिधि था। परमेश्वर ने उसे चुना था और परमेश्वर ने इसराइल को भी चुना था। महायाजक के लिए आवश्यक था कि वह स्वच्छ एवं श्वेत मलमल के वस्त्र पहने और उनके ऊपर महिमा का वस्त्र पहने। यहोशु को यहां इसराइल का प्रतिनिधित्व करने वाला महायाजक कहा गया है और उसके वस्त्रों को स्वच्छ होना था, परंतु वे मैले थे, अर्थात उसके वस्त्रों पर मानवीय विष्ठा लगी थी और उनसे दुर्गंध उठती थी। मेरे मित्रों, इसराइल का पाप परमेश्वर को ऐसा दिखता था। इसका उपचार क्या होगा? मुझसे किसी ने एक प्रश्न पूछा जो वास्तव में एक आम प्रश्न है, क्या मैंने अक्षम्य पाप किया है? क्या मैंने ऐसा पाप किया है जो कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता है? मैंने कहा, कदापि नहीं। प्रभु यीशु आपके सब पापों के लिए मरा है। आप जो भी हैं और जैसा भी पाप आपने अब तक किया है, यदि आप उसके पास आकर अपने पापों को स्वीकार करें और उसे अर्थात यीशु को ग्रहण करें और सच्चे दिल से करें, तो वह आपके पापों को क्षमा करेगा। रोमियो की पत्र 10 अध्याय के 4 पद में लिखा है, हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अतः आपने क्या किया उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकते हैं। सिर्फ आपको यही करना है कि अपने पापों को उसके सम्मुख मान लेना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, क्या आज आप अपने जीवन को पापमय जीवन बनाए हुए हैं? क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आपका भी यही प्रश्न है कि क्या मेरे पाप क्षमा होंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आपके पापों को क्षमा कर सकता है। वह आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, परंतु प्रश्न यह है कि क्या आप क्षमा पाने के लिए तैयार हैं? मेरे मित्रों, इस विषय पर आप अवश्य ही विचार करें और निर्णय लें ताकि आपके जीवन पाप से मुक्त किए जाएं। इसी के साथ आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
फुर्सत मिले तो यही सोचना, फर्ज अपना निभाया है तूने कहा, नेमत तुझे जिंदगी की मिली, नेमत तुझे जिंदगी की मिली, दूरे न जाना इसे रूबरू है खुदा, तू समझ ना सका खुद पर सत मिले।